Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Verse Number 41. Bhagavan Sri Krishna ke mukharvind se nikle hue in amritmayi shabdon ko kripaya mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, Prapya Purnya Kritam Lokan Ushitva Shashwati Sama Shuchinam Shrimatam Gihi Yoga Brashto Bhijayati Prapya Purnya Kritam Lokan Ushitva Shashwati Samah Shuchinam Shrimatam Gihi Yoga Brashto Bhijayati Prapya Purnya Kritam Lokan Ushitva Shashwati Samaha Shuchinam Shrimatam Gihi Yoga Brashto Bhijayati Prapya Purnya Kritam Lokan Ushitva Shashwati Samaha Shuchinam Shrimatam Gihi Yoga Brashto Bhijayati Shabdon ka arth Prapya Prapt karke Punya Kritam Punya Karma karne walon ki Lokan लोकों में उषित्वा निवास करके शाश्वती अनेक समाह वर्ष शुचीनाम अर्थात पवित्र आत्माओं के श्रीमतम संपन्न लोगों के गेहे घरों में योग भ्रष्ट आत्म साक्षात्कार के पथ से च्युत व्यक्ति अभी जाए थे जन्म लेता है. अनुवाद: असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं. एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगा अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं. जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहां केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है. वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके. योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है. किंतु जो इतने अध्यसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना में तक ऊपर ले जा सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। भगवान के इन दिव्य वचनों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सादृश्यातम् सहगण रघुनाथ वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद्गीता मात की जय हो। छठा अध्याय उसका अंतिम भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें श्लोक नंबर 37 में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। 37 अर्जुन पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेता योगा चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। जो शुरू में तो योग का अभ्यास करने का प्रयास करता है श्रद्धा से, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, तो उस असफल योगी की क्या गति होगी। तो भगवान अभी उस असफल योगी के फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। जैसे कल हम भगवान ने बहुत ही सुंदर आश्वासन दिया श्लोक नंबर 40 में, बहुत सुंदर शब्द भगवान ने, मिसरी से भी मीठे शब्द हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इस संसार की बात करते हो अर्जुन, न इस संसार में और न ही आगे के लोक में उसका कभी विनाश नहीं होता, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। मेरे मित्र जो कल्याण कृत कार्य करता है, अर्थात जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता उससे अधिक कल्याण कृत कार्य कोई नहीं होता, और जो ऐसा कर लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन ये तो बोल दिया कि मैं हमेशा, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन का उत्तर तो नहीं हुआ कि उसका होता क्या है। तो भगवान आज हमें बताते हैं कि भ्रष्ट योगी को आखिर प्राप्त क्या होता है। भगवान ने कहा उसका कभी अहित नहीं होगा, ना इस लोक में ना ही उस लोक में विनाश नहीं होगा, लेकिन आज भगवान बता रहे हैं कि उसे प्राप्त क्या होता है जिसने भक्ति करना शुरू तो की परंतु भक्ति की सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट में उसे क्या दिया जाएगा, इनाम क्या मिलेगा। तो भगवान यूं समझो आज रिवार्ड की बात बता रहे हैं कि क्या इनाम मिलेगा उसे। भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं अगर वो योगा की सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृतम। वो ऐसे लोगों को प्राप्त करता है जो केवल पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं। बहुत सारा पुण्य का स्टॉक जिसके पास होता है, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके लिए अलग से लोक होते हैं, जैसे चंद्रलोक या स्वर्ग लोक या फिर इसी तरह के बहुत ही आनंददायक, आनंद देने वाले लोग होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो स्वर्ग लोक को जाते हैं जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि वहां पर ऐसे लोगों पर जाने के लिए कोई साइंटिफिक उपाय नहीं होता है, जैसे आज लोग है ना साइंटिफिक उपायों के द्वारा अलग अलग प्लैनेट्स में जाने की घोषणा करते हैं कि हम सूर्य पर होकर आए, चंद्रमा पर होकर आए, राहु पर होकर आए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले ही मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं श्रद्धालु हूँ, और शास्त्र बताता है कि दूसरे लोकों में जाने के लिए, दूसरे है ना प्लैनेट्स को जर्नी करने के लिए, वहां पर सफर करने के लिए आपको उतना पुण्य का अमाउंट जमा करना पड़ता है। और भगवान साफ साफ कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान। उस जगह पर जाने के लिए आपको पुण्य की पूंजी चाहिए, और दूसरी बात कि वहां पर जाने के लिए आपका मरना जरूरी है। आप इस भौतिक शरीर के साथ दूसरे लोकों में नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक, जैसे ये है ना हमारी पृथ्वी है, उसके अनुसार हमारा ये शरीर बना है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए वो पृथ्वी पर है ना वॉक करता है, टिकता है। ऊपर भी जाएगा कोई भी चीज तो वो पृथ्वी पर आके गिरेगी। तो क्योंकि अब देखो पंच तत्व होते हैं ना, पंचभूत होते हैं जो, तो हर एक प्लैनेट्स के अनुसार उसका शरीर बना हुआ होता है। कुछ स्पेस में रह सकते हैं, कुछ राहु में, कुछ चंद्रमा में, कुछ जीव सूर्य लोक में रहते हैं। अब सूर्य लोक में कितनी कितना तपिश, सूर्य हमारे से करोड़ों योजन दूर है, फिर भी हमको कितनी तपिश लगती है। तो जो सूर्य लोक में रहेंगे तो उनको कितनी गर्मी लग रही होगी, लेकिन वो वहां पर क्यों रह सकते हैं? क्योंकि उनके शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा है ना, तो अग्नि तत्व वो वहां पर सर्वाइव कर सकते। तो हर एक प्लैनेट में जाने के लिए आपको उसके प्रकार शरीर जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे हम इस भौतिक शरीर से नहीं जा सकते। यदि कोई कहता है, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सिर्फ है ना हमें मूर्ख बनाने की बातें हैं कि कोई चांद पे गया, कोई सूर्य पे गया, कोई स्वर्ग में गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत सारे पुण्य अर्जित, यहाँ पर इसलिए भगवान ने कहा ना प्राप्य पुण्य कृताम लोक। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कुछ पुण्य आत्मा होते हैं, उनके पुण्य इतने ज्यादा विकसित होते हैं कि वो सह शरीर स्वर्ग में जा सकते हैं। जैसे कौन गए थे याद है आपको? अर्जुन गए थे। अर्जुन गए थे ना जब इंद्रदेव से बहुत सारी शिक्षा और शस्त्र उन्हें प्रदान प्राप्त करने थे, वहां पर उनकी भेंट उर्वशी से भी हुई थी, बताया था ना मैंने आपको। बट दीज आर वेरी एक्सेप्शनल केसेस है ना, हर किसी के बाकी। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि अर्जुन स्वर्ग में गया था तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता वहां पर अपने इस शरीर। एक और व्यक्ति है जिन्होंने बहुत कोशिश की थी स शरीर स्वर्ग जाने की, जानते हैं आप उसे? उसका नाम है त्रिशंकु। रामायण में उनकी घटना आती है। त्रिशंकु ने ये बहुत प्रयास किया कि मैं अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाऊं। तो वो गए, सबसे पहले तो वो विशिष्ट मुनि के पास गए और कहा कि आप मुझे स्वर्ग भेजो इस शरीर के साथ। विशिष्ट मुनि ने मना कर दिया, बोला ये भगवान के रूल्स के खिलाफ है, मैं आपको नहीं भेजूंगा। तो फिर ना वो विशिष्ट मुनि के पुत्रों, क्योंकि सारे पुत्र जो थे वो भी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उनके पास गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोला मेरे हमारे पिताजी नहीं कर रहे, वो कार्य हम थोड़ी ना करेंगे। तो फिर उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी इच्छा थी सह शरीर स्वर्ग जाने की। तो वो विश्वामित्र के पास गए और उन्हें बताया कि मेरी इच्छा थी, इच्छा है बहुत ज्यादा स्वर्ग लोक में जाने की सह शरीर। मैं समझा था कि विशिष्ट मुनि मेरी सहायता करेंगे, मगर वो तो मेरी सहायता कर ही नहीं सके। तो क्या आप करोगे? जब उन्होंने विश्वामित्र, क्योंकि उनकी विशिष्ट मुनि से बनती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि इसी बहाने विशिष्ट मुनि को नीचे दिखाया जा सकता है। ये मन में ईर्ष्या थी, कोई भाव, वो उधर हम नहीं जा रहे, हम यहाँ पर स्वर्ग के पास ही जाएंगे आज। तो है ना, फिर विशिष्ट मुनि को नीचा दिखाने के लिए विश्वामित्र ने कहा कि हाँ मैं तुमको सर शरीर स्वर्ग भेजूंगा। फिर उसने बहुत सारी तपस्या की थी, विश्वामित्र के पास बहुत तपस्या का बल था। तो उस तपस्या के प्रभाव से त्रिशंकु को उन्होंने स्वर्ग लोक भेज दिया और उसी शरीर के साथ वो स्वर्ग में आनंद करने लगा। परंतु जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, इंद्र तो अपने ना उधर मजे में पूरा था, और जब ब्रह्मा ने देखा कि ये त्रिशंकु सहशरीर स्वर्ग में आया, तो फिर इंद्र को बोला ये कैसे हो सकता है, तुम जो भगवान के रूल्स है उसको कैसे तोड़ सकते, तुमने इसको रहने कैसे दिया, मनुष्य शरीर में ये स्वर्ग में रह रहा है, निकाला इसको। तो फिर ना जब इंद्र ने भी देखा तो बोला हाँ ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां से स्वर्ग से उसको निकाला और नीचे फेंका धरती पर। और फिर जब वो आ रहा था, अभी स्वर्ग बहुत ऊपर है और धरती बहुत नीचे है, तो आ रहा था तो जोर से चिल्लाया विश्वामित्र, इतना जोर से चिल्लाया कि विश्वामित्र ने उनकी आवाज सुन ली। जब आवाज सुनी तो वो सेंटर तक पहुंच गए थे, यानी धरती नीचे और स्वर्ग ऊपर, वो सेंटर तक पहुंच गए थे। तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें वहीं पर रोक दिया, सेंटर में ही रोक दिया, और वहां पर इंद्र को बोला कि क्यों इसको भेजा मैंने जब इसको इतनी तपस्या, तो बोला आपने बड़े अपनी तपस्या से उसे भेजा था, लेकिन ये तो हमारे स्वर्ग का रूल ही नहीं है कि इस मांस हड्डी वाले शरीर से हम उसको नहीं रख सकते, इसको मरना पड़ेगा, उसके लिए पुण्य एकत्रित करने पड़ेंगे, उसके बाद ही उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी। तब विश्वामित्र ने कहा, बड़ा घमंड है तुम्हें अपने स्वर्ग पर, मैं तुम्हारे से अच्छा स्वर्ग बना सकता हूँ। तो इंद्र ने कहा आपको जो करना है कर लो। फिर उसके लिए मतलब त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से एक दूसरा स्वर्ग बनाया, मतलब नकली का स्वर्ग बनाया, और जिसमें वही सारी अप्सराएं वगैरह रखी और सब वो नदियां वगैरह बनाई, और इस तरह से त्रिशंकु को वहां पर सेंटर में बिठा दिया। अब वो ना स्वर्ग का और ना ही धरती का, सेंटर में लटक रहा था कई जन्मों तक। उसके बाद पता नहीं उसका क्या हुआ, बहरहाल ये हुआ था। और उस ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर हम कि पुण्यकृतान लोकम, जो पुण्यकृत लोक होते हैं उनमें जाने के लिए पुण्य एकत्रित करना आवश्यक है, और कोई विधि नहीं है। हम दूसरे किसी गलत तरीके से वहां पर नहीं जा सकते, और वहां पर जाने के बाद कितनी देर रहना मिलेगा उसको, जो भ्रष्ट योगी है पहले वहां पर जाएगा, प्राप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा। उषित्वा मतलब निवास करता है, शाश्वती मतलब दीर्घ काल तक, बहुत समय तक कोई निकालता उन्हें, वहां पर आनंद करता है और मजे से वहां पर रहता है, और इन लोकों में इतने आनंद के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे हमारी धरती पर, जैसे अगर हाईएस्ट रिचेस्ट व्यक्ति होगा तो उसको कितना आनंद प्राप्त होता होगा, लेकिन वो आनंद उस स्वर्ग के आनंद के 1% के बराबर भी नहीं है, इतना आनंद होता है स्वर्ग में। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे बहुत ही आनंद करने के बाद जो भी उसे चाहिए होगा, क्योंकि अब देखो योग से भ्रष्ट हो गया, इसका मतलब कि अवश्य उसकी कोई भौतिक इच्छा रही होगी ना। अगर वो योग कंप्लीट नहीं कर सका, किसी तरह से वो भ्रष्ट हो गया, तो जो उसके हृदय के अंदर भौतिक इच्छा रह गई है, उस भौतिक इच्छा को पूरा करने का सफिशियंट चांस उसे मिलता है स्वर्ग में, क्योंकि कोई ऐसी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वस्तु नहीं है जो वहां पर बगैर रिस्ट्रिक्शंस के आपको नहीं मिलती है। हर एक वस्तु जिसकी मतलब इच्छा आप करता है जीव, तो वो इच्छा करने से ही वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। तो इतना ही सुंदर वातावरण होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर आप गए हो पुण्य एकत्रित करने के बाद, तो आपको उन पुण्यों के बदले में दीर्घ काल तक वहां पर आनंद करने के लिए भेज दिया जाता है। एक प्रश्न जिसका उत्तर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने दिया है, अर्जुन के प्रश्न में ये प्रश्न निहित तो है परंतु वो इतना क्लियर नहीं है। अर्जुन ने क्या पूछा कि जो असफल योगी होते हैं उनकी गति क्या होती है, लेकिन एक प्रश्न होता है असफल योगी भी तो एक से नहीं होंगे, कुछ ऐसे असफल योगी होंगे जिन्होंने बहुत ही थोड़ी अभी तक जस्ट स्टार्ट किया होगा भक्ति को और वो असफल हो गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की होगी उसके बाद असफल हुए होंगे। तो ये भगवान जो अभी बता रहे हैं ना, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा, कि वो पुण्य लोकों में बहुत दीर्घ काल तक रहते हैं, ये उन असफल योगियों की है जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं, यानी कि अभी थोड़े ही समय तक उन्होंने योग अभ्यास किया है और फौरन से उनका पतन हो गया है, और पतन होने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ, पुण्य कृताम लोकान। कितनी महान बात है कि थोड़ी भी भक्ति यदि कोई करता है तो उसको ये गारंटी मिल जाती है कि वो ऐसे लोक में जाएगा जहां पर उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, और उषित्वा शाश्वती समा, और बहुत बहुत समय तक उसे वहां रहने दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरा भी प्रश्न उठता है, अभी जो बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद भ्रष्ट होते हैं उनका आंसर आगे देंगे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि थोड़ी सी भक्ति करने के बाद वो वापस से गिरते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को क्लियर करें, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में बताया है कि कुछ भक्त जो भक्ति स्टार्ट करते हैं तो वास्तविक लक्ष्य तो कृष्ण भावनामृत की सिद्धि को प्राप्त करना है। आप योग अभ्यास करते हो, कर्म योग करते हो, ज्ञान योग करते हो या भक्ति योग करते हो, वास्तविक क्या है लक्ष्य? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अब जैसे हम अभी ध्यान योग कर रहे हैं ना, तो उसके भी एंड वाले श्लोक में भगवान बताएंगे कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ वो है जो अपने मन को मेरे चरणों में लगाता है, केवल मेरे विषय में सोचता है। यानी कि सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक आनंद की इच्छा अभी तक हृदय में बाकी रहती है। यानी वैसे तो मुक्ति, लिबरेशन या कृष्ण प्राप्ति ही योग का मकसद होना चाहिए, लेकिन फिर जब उस रास्ते पर कोई जीव निकलता है तो उसके हृदय में अभी भी कुछ न कुछ भौतिक इच्छा बाकी रहती है। मतलब वो अभी तक मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हृदय से तीव्र इच्छा नहीं होती है, उसकी इच्छा होती है कि कुछ भौतिक भोग भी प्राप्त किया जाए। तो इस बात को समझाने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। वे बताते हैं सबसे पहले कर्दम मुनि के बारे में। हम सब जानते हैं कर्दम मुनि भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। वो भगवान की बहुत 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 तपस्या करते थे, बहुत भगवान के लिए ध्यान लगाते थे और इतनी तपस्या करते थे, लेकिन उनको एक अभाव रहता था हृदय में कि तपस्या मैं करता हूँ तो बहुत सारी ऐसी बीच में रुकावटें आती हैं, जैसे प्रसाद बनाना और इसके अलावा घर में भी और भी कोई कोई, मतलब उसको ऐसा लगता था कि अगर मेरी कोई शुद्ध शुद्ध भक्त के साथ शादी हो जाए ना, कोई डिवोटी मेरी पत्नी हो जाए, तो मुझे भक्ति में साधना में बहुत हेल्प करेगा ना। तो बहुत वो तपस्या की, कभी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और भगवान ने पूछा तुम्हें कुछ चाहिए, वरदान मांगो। तो कर्दम मुनि ने कहा हाँ प्रभु, मुझे शादी करनी है किसी शुद्ध वैष्णव के साथ, शुद्ध भक्त के साथ मेरा विवाह करा दो ताकि मुझे भक्ति में वो सहायता करे। तो भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा और एक दो दिन के बाद वहां पर मनु और शत्रुपा वो दोनों पधारे अपनी पुत्री देवहूति के साथ और कर्दम मुनि को कहा कि हमने नारद मुनि से और अन्य ऋषियों से आपकी महानता के विषय में बहुत कुछ सुना है और हम हृदय से चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह आपके साथ हो, तो कृपया आप हमारी पुत्री को ग्रहण करो। तो कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब संतानें उत्पत्त हो जाएंगी, जब संतानें हो जाएंगी तो फिर मैं घर त्याग कर तपस्या करने के लिए पुनः चला जाऊंगा, तब तक मैं उनके साथ रहूंगा जब तक संतानें उत्पन्न होंगी। तो सबने यस किया, परंतु हुआ यूं क्योंकि अब हृदय के अंदर थोड़ी सी इच्छा थी कि कोई साथ होना चाहिए। देखो, जब तक हमारे हृदय के अंदर कोई भी अभिलाषा ना बचे, तुम कृष्ण मुझसे कैसे भक्ति करवाना चाहते हो कराओ, मेरी ये इच्छा होगी कि नहीं ऐसा चाहिए, तो फिर वैसा प्राप्त करने के लिए हमें वो समय निकालना पड़ेगा, समय को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण, एज यू वॉन्ट एज यू विश सो यू डू, तुम्हारी मर्जी है, मैं सरेंडर हूँ, मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, डिवोटी संग भी, सिर्फ डिवोटी संग चाहिए, लेकिन डिवोटी रिलेशन, देखो संग एक अलग बात होती है, रिलेशन एक अलग बात होती है। संग हमें कर्मों से मिलता है, सॉरी, रिलेशन हमें कर्मों से मिलता है और डिवोटी संग जो है वो स्वतंत्र है। जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, तो हमारी सिंसियरिटी को देखकर भगवान हमें शुद्ध भक्तों का साथ दे देते हैं, वो कर्मों से नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बोल देंगे कि नहीं इसके साथ मेरा रिश्ता होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए, तो उसके लिए फिर भुगतने के लिए समय भी। तो कर्दम मुनि ने जब इच्छा की पत्नी की, तो उनकी शादी हुई देवभूति के साथ, लेकिन क्योंकि वो तपस्वी थे उनका मन अटका हुआ नहीं था उसमें, वो केवल उनकी इच्छा क्या थी कि मुझे भक्ति में सहायता करने वाली पत्नी चाहिए। तो फिर जैसे ही शादी हुई वो फिर भी समाधि में ध्यान में लगे हुए, तो बहुत वो सालों तक उन्होंने आंख ही तक नहीं खोली और मतलब देखा तक नहीं देवहूति को। बहुत सालों के बाद जब एक दिन अचानक से वो अपनी समाधि तोड़ी, उनकी समाधि टूटी, तो सामने देखा देवहूति, जिस जब उनकी शादी हुई थी तो वो इतनी छोटी थी, 14 साल की बहुत ही कम सिन प्यारी सी बच्ची थी, और अब वो एक वृद्ध हो गई थी, उनके बाल भी झड़ रहे थे, फेस भी ऐसा हो गया था। तो उनको याद भी नहीं था कर्दम मुनि को कि ये कौन है। इतने सालों तक देवहूति ने सिवाय पति भक्ति के और कुछ नहीं किया, पति की सेवा की, और उस पति की सेवा के कारण अब इस योग्य हो गई थी कि अब भगवान उन्हें स्वीकार करे, भगवान का धाम उन्हें प्राप्त हो। शास्त्र कहता है कि अगर पति शुद्ध भक्त है तो फिर पत्नी को कोई और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, वो शुद्ध वैष्णव केवल उनकी भक्ति में सहायता करने से आप वही फल प्राप्त करोगे जो महान भक्त भक्ति के द्वारा प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान अपनी भक्ति के से ज्यादा अपने भक्त की सहायता करने वाले से प्रसन्न होता है। तो फिर जब उन्होंने नेत्र खोले और देवहूति को देखा, फिर देवहूति से पूछा भी कि देवी आप कौन हैं, तब देवहूति ने बताया कि कई साल हो गए हमारा विवाह हुआ था, आपको याद नहीं है। तब कर्दम मुनि ने कहा हाँ मुझे याद आ गया। तो फिर उन्होंने एक नदी अपनी ना तपस्या के द्वारा एक नदी बनाई और बोला देवहूति आप जाइए इसके अंदर स्नान करके आइए। फिर वो गई स्नान करने के लिए और कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ, इस सुंदर कन्या को राजकुमारी है ये, उसको मैं वहां से लेकर आया उसके घर से, मगर इसको कोई भी सुख प्रदान नहीं किया। मैं पति हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को सुख संतोष प्रदान करना, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा करूंगा। और जब देवहूति उधर गई स्नान किया तो वो फिर से छोटी 14 साल की कन्या बन गई और उसके साथ साथ में बहुत सारी जो नदी थी उसमें से बहुत सारी अप्सराओं जैसी बहुत सारी उसकी सखियां उत्पन्न हुई जिन्होंने देवहूति को बहुत अच्छा श्रृंगार किया और पति के सामने लेकर आए। कर्दम मुनि भी खुद भी बहुत बूढ़े हो गए थे लेकिन योग तपस्या से वो भी यंग हो गए। और कर्दम मुनि ने एक बहुत ही सुंदर वाहन तैयार किया और वो इतना सुंदर था ये वाहन कि मतलब आज के जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनका कोई बराबरी नहीं, मतलब जो वस्तु की इच्छा हो वो उसमें फौरन से प्रकट हो जाए। जैसा मौसम चाहिए होता है वो वैसा मौसम हो जाता था, जैसे मौसम के फल वगैरह चाहिए होंगे वो ऐसे हो जाएगा, जिस तरह का वातावरण चाहिए, रात चाहिए तो रात हो जाए, दिन चाहिए तो, अगर आपको छोटा अभी सिर्फ दो लोग के बैठने की जगह चाहिए तो बैठने की जगह हो जाए, लेटने की जगह चाहिए तो लेटने की हो जाए, और है ना कुछ भी मना जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा उन्होंने विमान बनाया और अपनी देवहूति पत्नी को बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आनंद प्राप्त कराऊं, तो फिर आप बताओ कहाँ चलना पसंद करोगे आप हनीमून के लिए। तो देवहूति ने कहा मैं तो बचपन से सिर्फ यही देखा है कुटिया, मुझे पता ही नहीं है संसार में क्या क्या, आपको जिधर अच्छा लगता आप ले जाइए मुझे। तो फिर वो बहुत बहुत जगह पे गए घूमने के लिए, देखने के लिए, स्विट्जरलैंड और ना पेरिस और दुबई और कहीं कहीं गए सिंगापुर वगैरह, लेकिन कर्दम मुनि ने कहा ये सब जगह तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ऐसा करते हैं स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर बाग है, हम उस बाग में चलते हैं। तो मतलब बहुत ही सुंदर जगहों पर उन्होंने वो लेकर गए अपनी पत्नी को और कई सालों तक इस तरह से भ्रमण करते रहे, आनंद उठाते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि देवहूति ने कहा कि प्रभु मुझे वापस घर जाना है, मुझे घर बहुत याद आ रहा है। ये एक सुशील नारी की पहचान है कि वो घर से ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि अभी मैं घर जाऊं, क्योंकि घर में मुझे घर में एक स्त्री के प्राण होते हैं। वहां पर वो घर नहीं होता है, उसका मंदिर होता है, उसमें भगवान होते हैं, सेवा होती है। तो जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, हमें घर की याद आना स्वाभाविक है। तो फिर उसने बोला अभी घर चलते हैं। तो फिर वापस घर आए और फिर कई बहुत सारे सालों तक उन्होंने बहुत ही प्रेम और आनंद से बिताए। उनको 9 कन्याएं हुई। तब कर्दम मुनि ने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। तब देवहूति को रोना आया बहुत और कहने लगे, प्राणनाथ आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, इतनी सारी बेटियां हैं, इनका विवाह भी कराना है, और ये सब तो अपने अपने घरों में चली जाएंगी, फिर मैं अकेली कैसे रहूंगी? आपके बगैर रहने से ज्यादा बेहतर है कि आप मुझे विष देकर मार के चले जाओ। मैं अकेले रहने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती हूँ। तब कर्दम मुनि ने कहा कि ठीक है प्रिय, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। जब तक मुझे पुत्र नहीं हो जाता है, तब तक मैं ना आपके साथ ही रहूंगा। और जब कर्दम मुनि ने पूछा था ना, भगवान को बोला था कि मुझे स्त्री चाहिए, शादी करनी है मुझे एक शुद्ध वैष्णव, तब भगवान ने उन्हें एक वचन भी दिया था कि हाँ, आपकी बहुत ही सुंदर सुशील भक्त के साथ शादी होगी और मैं आपके यहाँ पर पुत्र बनकर उत्पन्न होऊंगा। तो फिर भगवान का वो वचन भी कर्दम मुनि को याद आया कि भगवान को आना है मेरा पुत्र बन के। यहाँ पर एक बात और भी समझने की है कि जब भक्त बहुत ज्यादा भक्ति करने के बाद भी अगर इल्यूजन में मोहग्रस्त हो जाता है, तो फिर इसका एक कारण ये होता है कि भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान को आना था उनके घर पे। अगर वो भक्ति करता नहीं था, शादी नहीं करता, तो फिर भगवान कैसे पैदा होते? वो खैर अलग बात है, भगवान तो स्तंभ से भी पैदा हो जाते हैं, किसी की नाक में से, ब्रह्मा जी की नाक से निकल जाते, लेकिन फिर भी भगवान को कर्दम ऋषि और देवहूति की संतान बन के देवहूति को आना, आध्यात्म की सांख्य योग की शिक्षा देनी थी। तो फिर उनका उनके हृदय में भगवान ने ये विचार किया। यहाँ से ये बात समझनी है कि भक्त के हृदय में, शुद्ध भक्त के हृदय में जो विचार आता है, उसमें कहीं ना कहीं भक्त के साथ साथ भगवान का भी हस्तक्षेप होता है। तो समय बीता और देवहूति के यहाँ पर एक संतान उत्पन्न हुई, कपिल देव। और बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ेंगे 3 स्कंद में देवहूति और कपिल देव महाराज के बारे में बहुत ही सुंदर ये प्रश्न है, मतलब सुपर प्रश्न है और सुपर उनके उत्तर कपिल देव देते हैं। तो इतना मतलब हमें यहाँ से ये समझना चाहिए कि हृदय के अंदर अगर कोई अभिलाषा रह जाती है, तो भगवान अवश्य पूरी करते हैं। भक्त के योग क्षेमम वहां में, हम भक्त की इच्छा को पूरा करना और जो उनके पास है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान ने ली हुई है। और एक दूसरी भी कथा यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज बताते हैं, वो सोबरी मुनि के बारे में बताते हैं। आपने सुना है कभी उनके विषय में? सोबरी मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। और वो कहाँ तपस्या करते थे जानते हो? वो हजारों साल तक पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे, मतलब पानी के अंदर ही उन्होंने तपस्या अपनी स्टार्ट की। परंतु एक समय ऐसा हुआ कि वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो उसने देखा उस जल के अंदर एक मछली, मतलब 2 मछलियां आपस में संभोग कर रही थी। पानी के अंदर तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी जब उन्होंने ये दृश्य देखा, तो उनके हृदय में काम इच्छा उत्पन्न हुई और वो अपनी उस तपस्या का परित्याग करके महाराजा मानधाता के पास गए और महाराजा मानदाता को बोला कि मुझे विवाह करना है, आपकी जो पुत्रियां हैं उनमें से किसी के साथ मेरा विवाह कराइए। तब मानदाता ने देखा ये, क्योंकि वो हजारों सालों से, पता नहीं कितने सालों से उसमें जल में तपस्या कर रहे थे, बहुत बूढ़े हो गए थे और कुरूप भी थे, मतलब सुंदर भी नहीं थे और इसके अतिरिक्त बूढ़े थे, सुंदर नहीं थे, अजीब बहुत लग रहे थे। तब सोबरी मुनि ने देख सोबरी मुनि को देखकर मानधाता ने कहा, मेरी बेटियां इतनी नाजुक सी हैं, इसके साथ तो रह ही नहीं सकेंगी, वो तो डर डर के ही मर जाएंगी। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटियों को इस बात की कि उनको जिसके साथ शादी करनी हो भले करें, आप जाके उनमें से किसी से भी पूछ लो, आपको जो अच्छी लगती है उनमें से पूछ लो, अगर वो शादी के लिए एग्री है तो फिर मैं उनको मना नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो सोबरी मुनि गए उस बेटियों के पास, तो वो उनको देख के ही मना कर दिया, क्योंकि अब इतने बूढ़े और इतने बदसूरत व्यक्ति के साथ कौन शादी करेगा, वो इतनी नाजुक सी सुकुमारियां थी। तो सोबरी मुनि ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे मना करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था अपना फेस कितने सालों से। तो उन्होंने सोचा इतनी सी बात के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने योग तपस्या के बल पर इतना सुंदर रूप धारण किया, तो बहुत ज्यादा सुंदर बन गए, इतने प्यारे उनका फेस इतना प्यारा लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो किसी ने उन्हें पहचाना भी नहीं। और जब वो राजा के पास गए तो राजा ने स्वयं ही कहा कि आप मेरी बेटियों से मिलो, मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से किसी के साथ विवाह करो, देखो आप मेरी बेटियां बहुत सुंदर हैं। तो उनके पास ले गए, तो अब बेटियों ने कहा, सारी बेटियों ने कहा कि हमें इन्हीं के साथ शादी करनी है। फिर राजा मानदाता की सारी बेटियों ने सोबरी मुनि के साथ विवाह उनका हुआ और बहुत बहुत समय तक उन्होंने आपस में आनंद किया। और महाराजा जो ये सॉरी सोबरी मुनि थे, उन्होंने अपने इतने सारे रूप, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी तो अपने बहुत सारे रूप जाहिर किए थे और हर एक लड़की के साथ अलग अलग रहते थे, वो आनंद करते थे। परंतु बहुत समय के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इस भौतिक शरीर के आनंद को प्राप्त करने के लिए मैंने अपना आध्यात्मिक आनंद खोया। मैं कितना आनंद से भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा था, तपस्या कर रहा था, योग अभ्यास कर रहा था, हृदय कितना आनंदित था, आत्मा कितनी संतुष्ट थी, और सिर्फ मछली के एक मछली के संभोग को देखने के लिए मैंने अपने पूरे जीवन को वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। इतनी सारी योग तपस्या मैंने जो की, इतना मैंने उसके लिए अभ्यास किया, वो सब जाया कर दिया मैंने, इस केवल इस हार्ड मास से बने हुए भौतिक शरीर को तृप्त करने के लिए। धिक्कार है मेरे इस सोच के ऊपर, मेरे इस डिसीजन के ऊपर कि मैंने इतने शाश्वत आनंद के को छोड़कर इस भौतिक विष्ठा को खाने के लिए इतना ज्यादा मैं उतावला हो गया। और फिर वो उन सबको छोड़कर संन्यास ले लिया उन्होंने और पुनः भक्ति में लीन हो गए। तो यहाँ पर यह बात समझने की है कि यदि हृदय के अंदर कोई भौतिक इच्छा रह जाती है तो भगवान क्या करते हैं, किसी न किसी तरह से भगवान अपने भक्त की उस इच्छा को भी पूरा करते हैं, ताकि वो उसे रियलाइज हो जाए कि भौतिक वस्तुओं में तुम्हें कभी आनंद प्राप्त नहीं होगा, जीव की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि, उसका कल्याण केवल और केवल कृष्ण के दास बनने में है, कृष्ण की भक्ति करने में है। इसके अतिरिक्त अगर त्रिलोकी का राज भी उसे मिल जाए, स्वर्ग, यहाँ पर क्या लिखा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समय, अगर शाश्वत समय के लिए पुण्य लोकों में उसे भेज दिया जाएगा, फिर भी उसे कभी भी मन की संतुष्टि, आत्मा का संतोष प्राप्त नहीं होगा। तो उतना ही नहीं, आगे भगवान कहते हैं, हम योग भ्रष्ट योगी के विषय में पढ़ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समय, बहुत बहुत समय के साथ के लिए वो वहां पर शाश्वत समय के लिए पुण्य लोकों में भेजे जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भगवान कहते हैं शुचीनाम श्रीमताम गेहे, गेहे बोलते हैं घर को। यहाँ पर दो टाइप के घर बताए हैं, एक है शुचीनाम, शुचीनाम वैसे इसका मतलब होता है ब्राह्मण, परंतु यहाँ पर अगर विस्तृत रूप में देखा है तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है पवित्र आत्मा, जो वास्तव में पवित्र आत्माएं होती हैं उनके घर में, या श्रीमतांगे है, या फिर संपन्न लोगों की, जहां पर बहुत ज्यादा धन दौलत ऐशो ईश्वर, मतलब जो बहुत लग्जरियस लाइफ होती है, जहां पर रॉयल्टी किंग होते हैं, राजा होते हैं, ऐसे घरों में, या फिर ना बहुत ज्यादा पुण्य आत्माओं के घरों में उनका योगो भ्रष्टो विजायते, उनका जन्म होता है। यहाँ पर ये बात समझने की है कि ऐसे घरों में उत्पन्न होने के बाद जीव के लिए ये संभव है कि वो अपनी अपूर्ण कृष्ण भावना अमृत को पुनः पूर्ण करें, परंतु ये सदैव फेवरेबल नहीं होता है। जैसे अब अमीर घराने में यदि आपको जन्म मिल गया और वहां पर आपके पास जब भक्ति के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां पर अमीर लोगों को ज्यादा अर्निंग के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है और भी बहुत सी टेंशन्स नहीं होती हैं, तो फिर वो आसानी से दिव्य पद पर तरक्की कर सकता है। लेकिन वहां पर बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि धन ज्यादा होता है। अब धन से क्या होता है, जीव को इंद्र तृप्ति करने के लिए भी अधिक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसीलिए धनी व्यक्ति लोग के घर में अगर देखेंगे, उनको भले ही धनी बनाया गया भगवान ने, उससे पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, मतलब भक्ति की है, तभी उनको धन मिला है बहुत, लेकिन आज क्योंकि बहुत ज्यादा धन है तो उस धन के अभिमान में वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, परस्त्री संग करते हैं, हर वो अपराध जो शास्त्र मना करता है, वो धनी लोग को ऐसा लगता है सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो कर सकते हैं आराम से, उनकी बेटियां उनके बच्चे वो भी कुकर्म करते हैं, मतलब उनको पूरा 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 असर मिलता है कि वो पुनः ऐसा नरकीय जीवन गुजारे, जिनके बदले में, जिस नरकीय जीवन के बदले में उसे पुनः पशु बनकर आना पड़ेगा। तो ऐसे जीवन को भगवान ने तो उनकी भलाई के लिए उनको ऐसा जन्म दिया ताकि वो आसानी से भक्ति कर सके। अब जो अमीर होंगे उनको है ना बहुत ही आसानी से अवसर प्राप्त होगा, वो अपने घर में अच्छा सा मंदिर बना सकते हैं, साधु संघ के लिए भक्तों को बुला सकते हैं, घर में भगवत गीता की कथा करवा सकते हैं और प्रसाद बांट सकते, बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं, अपने धन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा सकते हैं भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन अब ये धन ऐसा है कि उसे जब प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति जब तक आप इच्छा नहीं करोगे तब तक आप, ऐसा नहीं कोई बाय फोर्स आपको भक्ति नहीं करा सकता, लेकिन उस समय चांस जितने ज्यादा भक्ति करने के हैं उससे कहीं ज्यादा चांस बिगड़ने के भी हैं। बहरहाल ये है कि आप कर सकते हो, आपको इतना अच्छा जन्म मिला है तो आप कर सकते हो, तो भगवान ने ये चांस दिया होता है। जो अमीर है, जो अच्छे घर में पैदा हुए हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस जन्म में मुझे ये अच्छा जन्म मिला है ताकि मैंने पिछले जन्म में भक्ति की है, और आज अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो फिर उन कुकर्मों के कारण मुझे फिर से पशु बनना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर बनना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने जो फैसिलिटीज दी है वो भगवान फैसिलिटीज ले भी सकता है। तो सावधान रहना चाहिए, खासतौर पर जिनको फैसिलिटी, असल में जिसको ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है ना उनसे उम्मीद भी ज्यादा रखी जाती है, तो भगवान भी उनसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि इस जन्म में वो ज्यादा भक्ति करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर आगे क्या होगा उनका फिर देखेंगे। लेकिन भक्ति करने का चांस बहरहाल मिला है उसे, क्यों मिला है, क्योंकि उसकी योग भ्रष्ट हो गया, तो क्या हुआ, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, बहुत बहुत समय के लिए उनको पुण्य लोकों में भेज दिया जाता है और पुनः जन्म मिलता है। शुचि नाम श्रीमतांगे है योगो भ्रष्टो भी जाए थे, जहां पर वो आसानी से भक्ति को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रश्न उठता है यहाँ पर कि ये तो उन लोगों की बात हुई कि जिन्होंने अभी तक थोड़ी सी तपस्या की थी, थोड़ा सा है ना योग अभ्यास किया था, लेकिन वो भ्रष्ट हो गए थे। अब उन योगियों का क्या होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की, बहुत ज्यादा साधना की, लेकिन अंत में आकर वो फॉल डाउन हो गए। अब भगवान का घर है, वहां पर किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हो सकता। जिसने एक माला की है उसको एक माला का रिजल्ट मिलेगा, और जिसने डेली 16 माला की है उन्हें 16 माला का रिजल्ट मिलेगा। अब योग भ्रष्ट भी है, जिसने मतलब थोड़ी भक्ति की है उसे ये मिला, प्राप्य पुण्य कृताम लोकम, और बहुत टाइम तक अब उसी के हिसाब से जितना उसने पुण्य किया था और जितनी भक्ति की थी उसके हिसाब से उषित्वम शाश्वती समा, कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है कि 2 साल या 3 साल, मतलब उसके पुण्य कर्मों के अनुसार उसको वहां पर रहने दिया जाएगा। और उसके बाद शुचि नाम श्रीमताम ये है, अब देखो शुचि नाम और श्रीमताम भी ये 2 घरों में जाना है उसको, या तो बहुत ज्यादा पवित्र वो लोग होंगे पवित्र आत्माओं के घर में, या फिर बहुत ज्यादा धनवान, लेकिन आपने जितनी भक्ति की है उसके हिसाब से आपको वो भी, कुछ ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ अमीर होने के साथ बहुत ज्यादा ना वो धर्मात्मा भी होते हैं, मतलब जैसा जैसा आपने किया है उसके अनुसार आपको वैसा घर मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने बहुत ज्यादा तपस्या की है तो उसको क्या मिलेगा वो भगवान बताएंगे श्लोक नंबर 42 में, क्योंकि भगवान के दर में हर एक के लिए जस्टिस है, तो देखते हैं उन्हें क्या मिलता है कल। कृपया मेरे साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को दृढ़ता से कर सकूं। हरे कृष्णा।